نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم روح القرآن آج اس میں ہم کریں گے پارہ نمبر 19 19th پارہ وقال الذين اور کہا ان لوگوں نے یہ پاروں کے نام بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے سیٹ ہوئے میں اس پہ بھی کبھی زندگی میں موقع ملے تو ضرور سیکھے گا آج ہم اس پارے کو سورۃ فرقان کی آیت 21 سے کنٹینیو کریں گے اور 77 تک یہ سورت پوری کی پوری انشاءاللہ اس میں اور اس کے بعد پھر اگلی سورات بھی ہوں گی آیت نمبر 21 سے 25 ان کا ٹاپک ہے کفار کی نیکیوں کا انجام ہم دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف نیکیاں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے یا پھر اپیرنٹلی اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے وہ بھی کچھ نہ کچھ نیکیاں ضرور کر رہے ہوتے ہیں سورۃ بقرہ آیت 177 جس کو آیت بر بھی کہا گیا اس میں ہم نے ایک چیز سمجھی تھی اور وہ تھی کہ لیس البر ان تولو نہیں ہے نیکی صرف یہ کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو اس کو اگر سامنے لے آئیں اس وقت تو دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں اگر ہم اس کو بڑا بڑا کیٹیگرائز کر دیں تو چار قسم کے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں ایک بالکل نیچے کا طبقہ کرمنلز جس میں چور اچکے جسم فروشی کرنے والی عورتیں یعنی کسی بھی معاشرے میں ان کو پسندیدہ نہیں قرار دیا جاتا تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں تو دوسرا طبقہ جس کو ہم شرفا کا طبقہ کہتے ہیں شریف لوگ نوبل جو کہ عام طور پہ بہت سے ہوتے ہیں میڈیوکرز اچھے خاندانوں سے ہیں الحمدللہ چوری چکاری نہیں ہے گالم گلوچ نہیں اور نماز بھی ہے لیکن وہ بہت زیادہ اوپر ہمیں دین کے نام پہ بھی نہیں لکھتے اور نہ دنیا کے اعتبار سے اس سے ذرا سے اوپر جائیے تو ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جن کو ہم پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئلس کہتے ہیں ان لیڈ ٹائپ لوگ جو ٹرینڈ سیٹس کرتے ہیں اور مہذب لوگ کہہ لیجئے ڈاکٹرز ہیں اور بہت ہی زیادہ دنیاوی اچھی اچھی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں فورتھ جو سب سے اوپر کا لیول آ جاتا ہے پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی سوسائٹی کے ریلیجس لوگ ہوتے ہیں علماء کرام مشائخ مفتی پلس دین کی دعوت دینے والے امام امامت کرانے والے اب اگر آپ ان چاروں کو دیکھیں تو اپیرنٹلی سب سے اوپر والا گروہ سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے قرآن ہے سنت ہے ریلیجسلی وہ اسٹرانگ لوگ ہیں اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی عزت تو بہت کی جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس مقام تک کوئی پہنچنے کی خواہش کرے کہ نہ کرے اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں یہ سب قسم کے لوگوں میں یہ لوگ سب سے اوپر نمایاں ہوتے ہیں ان میں دین کی باتیں جس کو ریچولز کہہ لیں ان کا بہت شوق ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے بھی آتے ہیں داڑھی کتنی ہو شلوار کتنی اونچی ہو سجدہ اوپر ہو نیچے ہو یعنی یہ لوگ الحمدللہ دین میں ان چیزوں کو جو کہ بہت ہی ایک پریزرو فارم میں ہونی چاہیے اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن عام طور پہ ہر جگہ نہیں لیکن موسٹلی نہ بھی کہیں تو عمومیت کے ساتھ دیکھیں تو اخلاقی طور پہ لوگوں کو ان سے گلے ہوتے ہیں کہ کہیں مثال ہے کہ یہ دین کے نام پہ سختی کر رہے ہیں گھر والوں پہ یا باہر یا آپس میں بھی دلوں میں بغض اور کینے ہیں کہ عزت اتنی نہیں کرتے دوسرے دینداروں کی جتنی کرنی چاہیے جب آپ اس سے دوسرے سیکنڈ گروپ پہ جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہے کہ ان کے پاس ریچولز بہت تھوڑے ہوتے ہیں نماز روزہ ہو گیا تو ہو گیا جمعہ کی نماز پڑھ لی تو بہت ہے عید پہ پڑھیں گے ایسی باتیں لیکن اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی عزت کیجئے ایون گھر کے ڈرائیور سے بھی بات کریں گے تو آپ جناب کر کے بات کریں گے لیجئے دیجئے والا انداز ہوگا تیسرا ڈرائیور جو درمیان والے ہیں ان کا تو حال یہ کہ نیکی بھی کوئی نہیں چھوڑتے تو گناہ بھی نہیں چھوڑتے یہ ہر جگہ ہوتے ہیں گھلے ملے جس کو خلط و عملاً صالحاً واخر سیاح کا لفظ سورۃ توبہ میں دیا گیا گھلے ملے عمل سب کچھ جو فورتھ طبقہ ہے جس کو بالکل ہی کسی معاشرے کا پسا ہوا اور بدنام طبقہ لوگ کہتے ہیں نیکی وہ بھی کرتے ہیں مثلا محرم آئے گا تو سبیلے لگیں گی اسی طرح کہیں جا کر یہ کہیں کنواں کھدوا دیں گے تو پتہ کیا چلا جس بات کے لیے میں نے اتنی بات آپ کو یہاں بتائی کہ یہ مت سوچئے کہ صرف مسلمان ہی نیکی کرتا ہے لیکن کفار کی نیکیاں جیسے نان مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سوشل ورک ہے سوشل جسٹس ہے انصاف بہت ہے صفائی بہت ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کی کوشش ہے तो नेकियों का तो उधर भी, अब फ़र्क सिर्फ कितना है, राइटियस डीड्स एंड गुड डीड्स, वो नेकी जो नबी सल्लम की सुन्नत पे की जाए और आखरत में अदर पाने की उम्मीद पे हो और अल्लाह के लिए हो, इसको आप कहेंगे राइटियस डीड्स। इनमें किसी एक या तीनों से मुबर्रा जो चीज़ है उसको आप गुड डीड्स कहेंगे। तो कुफार की नेकियाँ गुड डीड्स थे। अल्लाह ने ऐसी चीज़ों का क्या बता दिया, वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना, यानी वो कहा उन लोगों ने जो नहीं उम्मीद रखते हमारी मुलाकात की, क्यों नहीं उतारा गया हमारे ऊपर भी किसी फरिश्ते को, या हम भी देखते हैं रब को। अल्लाह कहते हैं बेशक इन्होंने तकब्बुर किया अपने नफ्सों में, यानी देखो छोटा मुंह बड़ी बात, खुद को कितना बड़ा समझ रहे हैं, और बहुत ही बड़ी से बड़ी इन्होंने सरकशी की। कोई बात नहीं, एक दिन ये फरिश्तों को देखेंगे, लेकिन उस दिन कोई खुशखबरी इनके लिए नहीं होगी कौन जिन्होंने जुर्म किए, और उस दिन तो ये कहेंगे बस दूर हो जाओ दूर हो जाओ। वक़दिमना इला मा मिलू, ये है असल में जुमला, और वक़दिमना इला मा मिलू मिन अमलिन, जो भी काम इन्होंने आगे अच्छे अच्छे करके भेजे हुए थे हम क्या करेंगे, फजालनाहु हबा मंसूरा। वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना रोशनदान से, आप जब धूप आती देखते हैं ना तो उसके अंदर छोटे छोटे येलो पार्टिकल्स होते हैं, उसको यहाँ हबा मंसूरा कहा गया, यानी बिल्कुल उड़ा देंगे। तो क्या पता चला कि जिसने आखरत के लिए नेकी की नहीं उसको वहाँ अजर नहीं मिलेगा। हाँ ज़्यादा ज़्यादा ये है कि दुनिया में इन लोगों को इनकी नेकियों की वजह से अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाता है। उसके बाद आगे बुरी दोस्तियों का इंजाम है, आयत 26 से 29 में, अलमुल्क यौम इज़िल हक़ लिर्रहमान, आज तो बादशाही रहमान ही के लिए है, और काफिरों पर यह दिन बहुत मुश्किल होगा। क्या होगा, यौम यौदुज़्ज़ालिमु, उस दिन काटेगा जालिम अपने हाथों को, मुराद या कि अपनी उंगलियां चबाएगा, फिर क्या कहेगा, यकूलु या लैतनी, हाय अफसोस मुझ पे, इत्तख़ज़्तु मा रसूली सबीला, कि मैं रसूल के साथ रास्ता बनाता, मैं रसूल के तरीक़ों पे चलता, उसके लाइफस्टाइल को बुरा ना कहता, या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़लानन ख़लीला, हाय अफसोस मैं वो फ़लां फ़लां को दोस्त ना बनाता, क्योंकि उसने मुझे ज़िक्र यानी नसीहत के आने के बाद गुमराह कर दिया। और इंसान शैतान तो है ही इंसान को हलाकत में डालने वाला। अगर आप इसमें देखें तो ये जुमला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़लानन ख़लीला, यहाँ दोस्तियों की बात हो रही है, वो दोस्त जिसने इंसान को गुमराह किया होगा, इंसान उसका नाम लेकर कहेगा काश मैंने इसे अपना दोस्त ना बनाया होता। ज़रा से इसको सोचिए, हम भी अपनी दोस्तियों के किबले दुरुस्त करें, क्योंकि नबी सल्लम ने फरमाया कि अलमरु अला दीनी खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो हर एक देख ले कि उसका दोस्त कौन है और वो ज़्यादा वक्त किन के साथ गुजारता है। पीछे हमने हज़रत नूह के बेटे के डूबने की वजह देख ली थी कि वो कुफार के साथ लग गया था। तो अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को बुरी दोस्तियों से बचाए। हाँ अगर कोई बुरा आपका दोस्त है, या अगर आपकी दोस्तों में किसी का रुझान बुरा है, तो उसको नहीं छोड़िए, बल्कि उसको अच्छे तरीके से अच्छी बात की दावत दीजिए। और बैड कंपनी में अच्छा बंदा भी बुरा बन जाता है, और अच्छी सोहबत में बुरे बंदे को भी शर्म आती है गुनाह करते हुए। इसीलिए अब आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शिकवा है क़यामत के दिन के जो होने वाला है, आयत नंबर 30, 30, वक़ाल रसूल या रब्बी, और कहेगा रसूल ए मेरे रब, या रब्बी हाँ, इन न कौम तखज़ू हाजल कुरान महजूरा, मेरी ये है वो कौम जिसने कुरान को छोड़ा हुआ था। ये क्या हुआ, हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे सिफारिश की, और यहाँ शिकायत हो गई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश बरहक है, लेकिन हर एक की सिफारिश नहीं होगी। तो ये आयत हर मुसलमान के लिए काबिले गौर है। इसमें जो असल नुक्ता है ना, वो क्या है, कुरान महजूरा, कुरान को छोड़ना, कुरान को तर्क करना। तो सवाल पैदा होता है कि कुरान को तर्क कैसे किया जाए। अभी भी कुरान पढ़ रहे हैं, फिर दौरे कुरान में भी पढ़ेंगे, फिर रात की तरावी में भी पढ़ेंगे, लोग तो हर तरफ कुरान की बातें करते हैं। और ये आयत बता रही है कि अल्लाह के नबी क़यामत के दिन कुछ लोगों की शिकायत करेंगे कि ये कुरान को पकड़ कर भी छोड़े हुए थे। और अगर आप आयत के अरबी पे देखें, इस पर एक लेक्चर भी है इसी नाम से, कुरान को पकड़ कर छोड़ना। हमें कुछ किस्में समझ आती हैं कि किस कुरान पाक को छोड़ने की क्या सूरतें हैं। मसलन आप देखिए, कुरान को ना सुनना, कुछ लोग नहीं सुनते, कुछ सुनते तो हैं लेकिन ईमान नहीं लाते इस पर। अच्छा कुछ सुनते भी हैं ईमान भी लाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। फिर ये सब भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुरान पाक को हाकिम नहीं मानते, यानी उसके फैसले अपनी ज़िंदगी में और अपनी अदालतों में नहीं लाते। ये सारा कुछ भी हो जाए तो कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते। अफला यतदब्बरून अल-कुरान, इसी तरह कुरान के ज़रिए अपने मुर्दा दिलों का इलाज नहीं करते। कुरान में शिफा है, रूहानी इलाज भी है, जिस्मानी शिफा भी है। तो जब कुरान के साथ ये मामला हो कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर, तो चंद सेकंड सोचिए, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो ज़िल्लत और रुसवाई है, और जो हर तरफ मुसलमान बस बुरी बुरी बातों में और बुरे बुरे इल्ज़ाम में है, क्या उसकी वजह कुरान को छोड़ना तो नहीं? ये आपकी मेरी कुरान से दूरी, आज आप देखिए कि कितने तकलीफ़ और सदमे के साथ कहना पड़ता है। हम दिन में 5 नमाज़ों में कुरान पाक की तिलावत करते हैं और मोस्टली हमें नहीं आती। अव्वल तो हम करते ही वो छोटी छोटी सूरतें जो बचपन से पढ़ी नहीं है, फिर नमाज का तर्जुमा नहीं आता, अत्तहियातुलिल्लाह का तर्जुमा कितनों को आता है। तो ये ज़रूरत है इस वक्त की, आज के दौर की सबसे बड़ी नेकी, जिस पे आपका वक्त लगे, जिस पे आपका माल लगे, जिस पे आपकी स्किल्स लगें, जिस पे आपके घर लगे, आपकी गाड़ियाँ निकलें, जिस काम के लिए, वो कुरान है। कुरान को ले लीजिए, कुरान को दीजिए, कुरान के लेने और देने के बीच में जो सीखना होता है उसको सीखिए, यही बात है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसके लिए चुन ले और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हम इस कुरान के खादिम बनकर इसको लोगों तक पहुंचा सके। फिर उसके बाद आयत नंबर 31 से 34 में इसका टॉपिक है, जिसका हादी यानी हिदायत देने अल्लाह, राह दिखाने वाला अल्लाह हो, इसे दुश्मन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नबी सल्लम की भी दुश्मनी हुई, और ये जो सूरह फुरकान हम पढ़ रहे हैं ना, इसको लिख लीजिए, इसका मेन टॉपिक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। ईमान भी रसूल नहीं था मक्का वालों का। सामने घर के पले बच्चे को देख रहे हैं, सादिक और अमीन उसको समझे थे, सब कुछ किया था, झूठ नहीं आपने बोला, आपका अखलाक बड़ा अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद जब वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढले, तो लोग अब दुश्मन बन गए, अपने भी खफा, मुझसे बेगाने भी नाखुश, क्योंकि मैं कभी जहर हलाहल को कह न सका कन। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी को इसमें तसल्ली दी जा रही है कि आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी तरह हर नबी की दुश्मनी की गई। लिकुल्ली नबीयन अदुव मिनल मुजरिमिन, क्यों? इसलिए कि उनको अपने लाइफ स्टाइल पर चोट पड़ती हुई दिखती थी। वो कहते थे इस आवाज़ को बंद कर दो, इसको छोड़ दो, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम आपको राह भी दिखा रहे हैं। और एक इतराज़ जो बिल्कुल बेतुका इतराज़ था कि क्यों नहीं पूरा कुरान इकट्ठा उतारा, ये क्या हो गया, थोड़ा जी आज ये आयत उतर गई मुझ पे, आज ये उतर गई, जुमलतन वाहिदा। अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके कुरान का पढ़ना क्यों है, लीनो सब बितबी फुआदक, ताकि हम इससे आपके दिल को थमा दें, और वरतलना हो तरतीला, इसको तरतील के साथ यानी ठहर ठहर कर समझ समझ कर पढ़ना। अब आप देखिए कि इस वक्त भी हम अल्हम्दुलिल्लाह एक पारा एक नशिस्त में कर रहे हैं, और अल्लाह की रहमत से एक भी आयत नहीं छूट रही, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट पेस है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो ये भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है इस पे भी, लेकिन जो लोग इसका मज़ा ले चुके हैं, अब उनके लिए इस आयत में एक दावत है, क्या? के रत्तल ना हो तरतीला। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके समझिए। रमज़ान के बाद अक्सर कुरान पाक के कोर्सेज ऑफ़र होते हैं, हम लोग भी ऑफ़र करते हैं। नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको सबीलुल जन्ना 23 का फ्लायर दिखे, वो आपके लिए, जाकर उस पेज की इन्फॉर्मेशन पढ़िए और दुआ कीजिए कि अल्लाह एक बार मुझे भी तो इस किताब को फातिहा से नाज तक, तर्जमे से, तजवीद से और तफसीर से, और फिर सबसे बड़ी बात ज़िंदगी की हिकमतें, लाइफ टाइम जो हमारी कह लीजिए कि टिप्स होती हैं ज़िंदगी गुजारने की, वो करने की दुआ कीजिए। अपनी बच्चियों को लेकर चलिए साथ, कल ज़िंदगी गुजारनी है, अपने बेटों को लेकर चलिए। तो यहाँ इस आयत से जो आपका बिरामल ये है कि अगर आज मुसलमानों की नस्लों पे किसी की नज़र भी है, अगर अगर वो उनको बहकाना भी चाह रहे हैं, तो अल्लाह की किताब जब पकड़ लेंगे हाथ में और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जवाब मिल जाएगा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, तो फिर इस इंशाल्लाह ऐसी नस्लों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकेगा। असल में हमारे बच्चे भी और हम खुद भी आज प्रैक्टिकली कुरान से दूर हैं, इसी का फ़ायदा उठाकर दुनिया में मुख्तलिफ मामलात हो रहे हैं। आगे दोबारा फिर माजी की इबरतनाक दास्तानें हैं 35 से 40 में। यहाँ सबसे पहले किस्सा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे उनका। अल्लाह ताला बार बार अंबिया कराम के किस्से क्यों लेकर आते हैं? अगर आप नोट कर रहे हैं तो इन आयात में पहले मूसा और हारून का किस्सा, फिर कौम नूह की बात है, हालांकि तरतीब ज़मानी में हज़रत नूह सबसे पहले थे। फिर इसमें कौम आद, समूद और अस्हाबुर रस मुख्तलिफ किए। ये फिर एंड पे अगर ये देखें कि बस्ती जिस पे पत्थर बरसाए गए ये कौम लूत थी। अल्लाह ताला ये सारे किस्सों का बस एक एक हेडर चलाकर आपको मुझे क्या बताते हैं कि गुस्ताखाने रसूल का बुरा अंजाम हुआ। हर दौर के नबी की गुस्ताखियाँ की गई, इसलिए आयत 41-42 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख देख कर जो ये आपका मजाक उड़ाते थे, कभी कनखियों से देखते कभी इशारे करते, वही जाराहू का, और जब वो आपको देखते हैं तो बस इनको तो मजाक ही सूझता है और कहते क्या थे, अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, देखो देखो इनको अल्लाह ने बोला रसूल चुनना था। यानी आप देखिए आज भी लोग दीनदार को हल्का जानते हैं। एक दुनियादार उस्ताद हो और एक दीनदार उस्ताद हो, बच्चे का दोनों के साथ मामला मुख्तलिफ होता है। तो क्या पता चला कि नबी की ज़िंदगी में भी लोग तौहीन रिसालत करते थे, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं आप इनकी फ़िक्र ना करें। वसौफ़ यालमून, अन करीब ये खुद ही देख लेंगे, ही न यरऊन अलअज़ाब मन अदल्लु सबीला, जब वो अजाब को देखेंगे तो इनको उस वक्त क्या पता चलेगा कि कौन है ज़्यादा भटका हुआ रास्ते के अतबार से। इसके बाद बड़ी ही अहम और फेमस आयत है सूरत फुरकान की 43 से 44। टॉपिक क्या है, नफ्स की पैरवी भी शिर्क है। अरअईत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या भला आपने देखा है उस शख्स को जो अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लेता है। अफअंता तकूना अलैहि वकीला, क्या आप इनके ऊपर वकील हो सकते हैं? क्या पता चला नफ्स को खुदा बनाना, हर काम अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी से करना, ये ख्वाहिश को इलाह बनाना है। आप देखिए कि अल्लाह ताला की शरीयत में बहुत सारी हमारी ख्वाहिशों पे चोट पड़ती है। इंसान का नफ्स खुला फिरना चाहता है। आप देखिए किसी भी जानवर को देखिए, वो गले में रस्सी डलवाना नहीं पसंद करता, कोई परिंदा है तो वो पिंजरे में कैद होना नहीं चाहता। फितरतन इंसान के, छोटा बच्चा देखिए, आप उसको कपड़े पहनाते हैं वो कपड़े उतार के फेंकता है, आप उसका हाथ पकड़ते हैं आओ तुम्हें खाना खिलाऊं, वो कहता है मैं खुद खाऊंगा। तो यहाँ ख्वाहिश की गुलामी, अफसोस के साथ आज का कल्चर ख्वाहिशों को प्रमोट करने लगा। और इसमें फिर मैं आदतन आपको कहूँगी कि एज अ मदर, बच्चों को बचपन से ही बजाय इसके कि वो अपनी बात करें और आप उनकी हर बात मानती जाएं, इसको अपोजिट कीजिए। बच्चे को माँ की बात ही माननी है, अब्बू ही की बात माननी है। फिर ज़रा बड़े होने लगते हैं तो हम बड़ी मोहब्बत में, लाड में, बेटा क्या खाओगे, बेटा क्या पहनोगे, बेटा आपको मैं क्या दिलाऊं, ठीक है। एक सर्टेन एज के बाद बच्चों से ये पूछना चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग की आदत हो, अच्छे बुरे का फ़र्क हो, लेकिन बहुत छोटी उम्र में जब तरबियत ना हुई हो और सिर्फ कैंडीज़ और खाने और आइसक्रीम के फ्लेवर्स पूछना, यही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी ख्वाहिश को मोटा कर देती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की नेमते ही नेमते हमें दिखेंगी आयत 45 से 50 में, अलम तर इला रब्बी का कैफ़ मद्द ज़िल्ला, क्या तुमने नहीं देखा। ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, क्या तुमने नहीं देखा, इसका असल में मतलब ये होता है कि गौर करो। जैसे एक बड़ी मशहूर सूरत अलम तारा कैफ़ अफ़ाल रब्बू का बिसखाबिल फील, तो हम सब जानते हैं कि असहाबुल फील का किस्सा तो गुजर चुका, अब हम कैसे देखें। तो मुराद क्या है, गौर करो। और ये भी एक बड़ा प्यारा अंदाज़ है, तमसीली अंदाज़ होता है। तो इसमें अल्लाह ताला ने सायों के बढ़ने कम होने की बात की, सूरज की बात की, फिर उसको ऐसा ऐसा खींच लिया जाता है, कैसे सुबह पो फटती है और सूरज निकलता है और 10-11 बजे बिल्कुल सूरज हमारे सर पे आता है। फिर अल्लाह कहते हैं सुम कबज़ ना हुई लई ना कब्दन जसीरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको खींचते हैं, फिर रात और दिन की बात है, प्लस हवाओं की बात है, पानी की बात है। मान तहूरा से पता चलता है कि बारिश का पानी पाक होता है, फिर उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया जाता है और जानवरों और बहुत सारे इंसानों को पिलाया जाता है। यानी इतनी नेमतों का अगर तुम्हें बिल देना पड़े तो क्या करोगे, अगर तुम्हें ऑर्डर करनी पड़े तो लाइनों में लग जाओ। आज भी सुई गैस का मीटर लगने में इतना टाइम लग जाए, बिजली का मीटर आने में टाइम लगे, अगर ये सारी चीज़ों का भी होता तो तुम क्या करते, तो करो क्या। असल में जब रब ने नेमते दी तो उसका बिल तो देना है ना, हेयर और देयर, तो उसका हक क्या है, जिहाद बिल कुरआन। आयत 51-52 ये भी बड़ी शोहरत वाली आयत है और वो क्या है, वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। अब सूरह फुरकान मक्की सूरत है, तो चलिए मुख्तसर सफ़र ही सही, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जान चुके कि मक्का में जिहाद बिल्कुल नहीं हुआ, इजाज़त ही नहीं थी, कुफ्फ अयदियकुम की आयत थी। तो फिर यहाँ कौन सा जिहाद है, इसके बारे में हमारे सलफ़ सालेहीन की बात, कुरान से जिहाद। देखिए इस्लाम की दुश्मनी काफिर से नहीं, कुफर से है। ये जुमला लिखेंगे आपको ये सारा मौजू समझ आ जाएगा। अगर काफिर से दुश्मनी है तो तलवार चाहिए काफिर की गर्दन काटने के लिए, तो ये तो है ही नहीं है, वरना तो 13 साल का सब्र कौन करता, इतनी परसिक्यूशन, इतने फितने, दीन पे अमल करने की कीमत इतनी चुकाई, तो अल्लाह के नबी अपने साथियों को लेते और निकल जाते। और जिन्होंने बाद में बहादुरी के इतने जौहर दिखाए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे लोग, वो मक्का में भी करते लेकिन नहीं किया, क्योंकि इस्लाम काफिर को नहीं कुफर को मिटाना चाहता है। और कुफर को कैसे मिटाया जाएगा, कलम पकड़ के। और यहाँ एक जुमला लिख लीजिए, जो कौम कलम पकड़ लेती है उसको तलवारें पकड़ने की नौबत नहीं आती, वो तो फिर ये कोई एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि कोई घर बैठे को अच्छे बंदे को भी धमकियाँ देता रहे। अदरवाइज हमारा आज के दौर का भी यही जिहाद है, कुरान की तालीम को पानी की तरह कर दो। एक तो इस पर इसी नाम से एक लेक्चर भी है, 5 महाज, यानी आप जब कुरान के साथ बाहर दुनिया में निकलेंगे ना, एक कोर्स कर लें, थोड़ा कुरान सीख लें, उसकी समझ आ जाती है, तो आपके पास 5 मुख्तलिफ महाज हैं जिन पे आपने काम करना है, जिसमें जहालत को भी मिटाना है, जिसमें फ़िरके वारियत को भी ख़त्म करना है, जिसमें घरों की बेअमलियों को भी ख़त्म करना है। तो जिस तरह किसी पौधे की जड़ों में आप पानी दे दें, तो फितरत के तरीके के मुताबिक पानी आखिरी पत्ते तक भी पहुंचेगा। तो ग्रास रूट पे कुरान फैलाइए। आज है ऊपर ऊपर लेकिन अंदर रूह नहीं है, हमारी मासियाँ, हमारे ड्राइवर्स और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग अगर कुरान पढ़े हो, तो हमें उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं, ये चोरियाँ करेंगे, ये वो करेंगे, वो करेंगे। और इसी तरह बाहर दुनिया को देखिए कि नॉन मुस्लिम अगर मुसलमानों पर कोई ज़्यादती भी करते हैं ना, तो मैं इसको महसूस करती हूँ कि एक रिएक्शन है किस चीज़ का, कि तुमने हमें हमारे हिस्से की चीज़ नहीं दी, हम तुम्हारे पास भी नहीं रहने देंगे। ये इस्लाम एक अमानत था, ये कुरान एक अमानत थी दूसरों की। या अय्युह अन्नास कह के अल्लाह बार बार फरमाते हैं, ऐ लोगो, ओ मैनकाइंड, बस आपको मुझे मिल गया विरसे में, आपने मैंने इस कुरान को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। अब आप कहेंगे कैसे, इल्म लीजिए, इल्म दीजिए और इस पर ख़र्च कीजिए। 3 ही लोगों को अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक रहमत के करीब और अल्लाह ताला की लानतों से दूर किया गया। तो आप या तो कुरान लेने वाले बन जाएं और देने वाले, या फिर इसके लिए स्पॉन्सर्स बन जाएं।